नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग से बातचीत करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच तेल पाइपलाइन लिंक पर चर्चा हुई। भारत और अमरीका आज शाम वाशिंगटन में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फिर बातचीत शुरू करेंगे और ईरान ने अमरीका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से इनकार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमरीका के वार्ताकार पाकिस्तान जा रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। मुख्य रूप से जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। श्री ली मियुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से कल मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए श्री मियुंग की सराहना की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। श्री ली मियुंग की ये पहली भारत यात्रा है। भारत और दक्षिण कोरिया की पारस्परिक साझेदारी प्राचीन सभ्यागत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ये यात्रा सहयोग और मजबूत करने की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग और प्रथम महिला किम हिया क्यूंग का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा देसानायके ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित रेल पाइपलाइन पर विचार विमर्श किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में बताया कि दोनों ही देशों के बीच बातचीत में त्रिंकोमली में ऊर्जा केंद्र परियोजना और गैस पाइपलाइन लिंक के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया।
उपराष्ट्रपति ने भारत की ओर से चल रही पहलों का जिक्र किया, साथ ही उन प्रस्तावों का उल्लेख किया जिन पर दोनों देशों के बीच पहले से ही चर्चा हो चुकी है। इनमें त्रिंकोमाली में ऊर्जा केंद्र से संबंधित परियोजना और भारत और श्रीलंका को तेल पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरी दुनिया और विशेष रूप से यह क्षेत्र पश्चिम एशिया की स्थिति से उत्पन्न ऊर्जा संकट के दुष्परिणामों का सामना कर रहा है।
श्री मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, आवासीय परियोजना और मछुआरों के मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान श्री राधाकृष्णन ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और द्विपक्षीय विकास सहयोग पर बल दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठकों से भरे प्रभावशाली पहले दिन के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज श्रीलंका के मध्य प्रांत में स्थित नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे, जहां जमीनी स्तर पर जुड़ाव दिखाई देगा। भारत के कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए श्री राधाकृष्णन भारतीय आवास परियोजना स्थलों पर रहने वाले भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे। ये प्रतिबद्धता कल की घोषणाओं में भी स्पष्ट थी, जिसमें ओसीआई योजना को 6वीं पीढ़ी तक बढ़ाना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है, जिससे उन प्लांटेशन तमिलों को बड़ा लाभ होगा जो भारतीय दस्तावेजों के बिना श्रीलंका आए थे। संदेश स्पष्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ाव के माध्यम से और मजबूत हो रही है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत आज फिर शुरू होगी। ये वार्ता 22 अप्रैल तक वाशिंगटन में होगी। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी बातचीत में शामिल होंगे। वार्ता का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शुल्कों में बदलावों के बीच उसकी रूपरेखा की समीक्षा करना है। अमरीकी शुल्कों में बदलावों के बाद दोनों देशों के प्रस्तावित समझौते के फिर आकलन के लिए यह वार्ता महत्वपूर्ण है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत शुल्क हटाए जाने के बाद अमरीका ने सभी देशों से आयात पर 10% का अस्थायी टैरिफ 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए लागू किया था। अमेरिका टैरिफ नियमों में बदलावों को देखते हुए दोनों पक्ष समझौते की रूपरेखा की समीक्षा करना चाहेंगे। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
जम्मू कश्मीर में कल श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो अमरीकी पर्यटकों को उनके सामान से सैटेलाइट फोन बरामद होने के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सैटेलाइट फोन भारत में विनियमित संचार उपकरण है और इनके इस्तेमाल के लिए विशेष अनुमति जरूरी है। दोनों पर्यटकों से पूछताछ जारी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमरीका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत फिर शुरू होने का दावा करते हुए कहा था कि अमरीकी वार्ताकार आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने वार्ता से इनकार करने का कारण अमरीका की अत्यधिक मांगें, उसकी बेबुनियाद अपेक्षाएं, रवैये में लगातार बदलाव और जारी समुद्री नाकेबंदी को बताया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, लेकिन संभावित समझौते को लेकर सतर्कतापूर्वक आशावादी रुख भी अपनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समझौता किसी न किसी रूप में होगा। उन्होंने दोहराया कि अगर तेहरान सहयोग नहीं करता है तो अमरीका बलपूर्वक जवाब देगा। अमरीका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखे हुए है। ईरानी अधिकारियों ने लेबनान की स्थिति को अमरीका के साथ अपनी व्यापक वार्ता से सीधे जोड़ा है और तेहरान ने कहा है कि उनके मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों की आपूर्ति संघर्ष शुरू होने से पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो रही है। लेबनान में इजरायली सेना ने देश के दक्षिण में एक पीली रेखा बनाई है ताकि हिजबुल्ला के साथ युद्ध विराम के दौरान इजरायल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सके। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण कुमार।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका द्वारा कल ईरान के ध्वज वाले मालवाहक जहाज को कब्जे में लेने का एक दावा किया है। ये जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट अमरीकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान के सैन्य मुख्यालय हजरत खातम अल अनबिया ने बताया है कि अमरीका ने ओमान सागर में एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला कर उसे जब्त कर लिया है। मुख्यालय ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन और समुद्री डकैती बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेल संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष के झटकों का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8 से 7.1% तक रहने का अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक अनिश्चितता के मौजूदा दौर में पिछले वित्तीय वर्ष की 7.6 वृद्धि दर के साथ मजबूत स्थिति में है। मुद्रास्फीति 4.5% और वित्तीय घाटा 4.5 से 4.6% तक रहने का अनुमान है। फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट्स ने कल गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मोहन बागान सुपर जायंट 9 मैच में 20 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग से बातचीत करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच तेल पाइपलाइन लिंक पर चर्चा हुई। भारत और अमरीका आज शाम वाशिंगटन में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फिर बातचीत शुरू करेंगे। और ईरान ने अमरीका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से इनकार कर दिया है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमरीका के वार्ताकार पाकिस्तान जा रहे हैं। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।